हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 23। कृपया इन अत्यंत ही परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कुंती महारानी भगवान को कह रही हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति शिरं शुचार्पिता विमोचिताहं तसहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपत्कणात् शब्दात् यथा मानो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ईशालु के द्वारा देवकी अर्थात श्री कृष्ण की माता कंसेन राजा कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाया गया अति चिरम दीर्घ काल तक शुचार्पिता दुखी विमोचिता अर्थात मुक्त किया गया अहम च मैं भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित विभो हे महान त्वयैव आप ही के द्वारा नाथेन रक्षक के रूप में मुहु निरंतर विपत गणात विपत्तियों के समूह से अनुवाद हे ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको पुत्रों समेत मुक्त किया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति सहित बंदी गृह में रख दिया गया था क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के आठवें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व के देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था किंतु कृष्ण का वध नहीं हो पाया क्योंकि वे नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे किंतु देवी भी अपने कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों से बचाई जाती रही। लेकिन भगवान ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था क्योंकि वे देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा कर सके थे। इसका कारण यह है कि देवकी के पति जीवित थे लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक नहीं था। निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट में रहता है। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते रहते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त होता है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर क्वीन कुंती की टीचिंग्स को हम पढ़ रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर भाव से कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पिछले श्लोकों को एक बार उच्चारण करेंगे ताकि हम लय में जो ये जा रही है प्रार्थना उसको समझने का प्रयास कर सकें। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नं अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृश्या न तु नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। भगवान को इतना बताने के बाद कुंती महारानी ने कहा, मैं स्त्री भला आपको कैसे समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको केवल प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप वह कृष्ण हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और भले ही आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो मैं अब तक बता चुकी हूँ कि आप आदि पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, मुनि और परमहंस भी आपको नहीं समझ सकते, आपके आने का कारण केवल भक्ति प्रदान करना है, लेकिन फिर भी आप इतने सारे गुणों के होते हुए भी वासुदेव के पुत्र होना स्वीकार करते हैं। देवकी नंदनाय च, और देवकी के गर्भ में रहकर उसको आनंदित करते हैं। यहाँ पर इतना कहने के बाद कुंती महारानी भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से माता की तरह स्नेह करती थी, उनका भी मात्र प्रेम था, तो वो ऐसे बता रही हैं कि मेरा प्रेम तो इतना अधिक नहीं है क्योंकि आपने मेरा पुत्र बनना स्वीकार नहीं किया बल्कि देवकी का पुत्र बनना स्वीकार किया है। वास्तव में भक्तों, ये स्वभाव है भक्तों का कि जब भी वो अपने प्रेम की तुलना करते हैं ना किसी के साथ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव उनको ऐसा ही लगता है कि मैं भगवान से अधिक प्रेम नहीं करता हूँ, जो दूसरा भक्त है ना वो ज़्यादा अच्छा प्रेम करता है भगवान से, भगवान की अच्छी सेवा करता है, भगवान से अधिक प्रेम करता है, मैं तो भगवान की सेवा भी अच्छी नहीं करता हूँ, मैं तो भगवान को प्रेम भी इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसीलिए भगवान भले उनको अधिक कृपा दे, लेकिन फिर भी जब कृपा की बात आती है ना, अपने ऊपर भगवान की कृपा जब देखते हैं ना, तब भक्त को क्या लगता है कि मैं भगवान से अधिक प्रेम नहीं कर रहा हूँ, अधिक प्रेम तो वो कर रहा है, लेकिन भगवान कृपा अधिक मुझे दे रहे हैं। वो चाहते ये हैं, मतलब भक्त की ये इच्छा होती है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन जब उनकी दृष्टि कृपा पर जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि कृपा मुझे अधिक मिल रही है, मैं अच्छा भक्त हूँ ये सोचकर नहीं, बस भगवान इतने मुझ पर कृपालु हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कृपा दे रहे हैं, बाकी भक्ति में इतनी अच्छी नहीं करता हूँ। इस बात को यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं। और आज के श्लोक में, श्लोक नंबर 23 में, भगवान श्री कृष्ण के अपने ऊपर उपकारों का स्मरण कर रही हैं कि कृष्ण, मैं आपसे देवकी की तरह स्नेह नहीं करती और ना ही मैं देवकी की तरह भाग्यशालिनी हूँ, परंतु यथा ऋषि केश खलेन देवकी, जिस प्रकार आपने देवकी माता को खल दुष्ट कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता, के जिस प्रकार देवकी मैया अत्यंत अत्यंत कष्टों में कंस के कारागृह में बंधित थी और उनकी आपने रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरी भी बहुत बहुत समय तक रक्षा की। लेकिन यहाँ पर कंस के द्वारा देवकी को जो कष्ट मिल रहे हैं और जो कुंती महारानी ने अपने जीवन में कष्ट भोगे हैं, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं विमोचिताहम च सहात्मजावे भो, कि आपने मेरी रक्षा, मेरे ऊपर उपकार, मेरी सहायता जो है वो हमेशा अपनी माता से अधिक किए हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुंती महारानी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने अपनी माता से भी अधिक आप मुझसे प्रेम करते हैं। कुंती महारानी अपनी तुलना देवकी से कर रही हैं और यहाँ पर कह रही हैं कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार पिता। अति चिरम का मतलब होता है दीर्घ काल तक, शुचार पिता का मतलब होता है दुखी। अब देवकी के कष्ट कि अगर हम गणना करें तो देवकी के शोक के कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि उनको कारागृह में डाल दिया गया था अपने पति के साथ, और दूसरा कारण कारागृह में रहकर भी उसको सुख से जीने नहीं दिया जा रहा था। जब भी उसका कोई पुत्र उत्पन्न होता था उसी समय कंस आकर देवकी की आंखों के सामने उस पुत्र का वध कर देता था, पटक देता था, और छोटी सी नन्ही सी जान जो अभी अभी संसार में आई है, जिसने अभी तक अपनी माता का स्तनपान भी नहीं किया था, पहली बार वो रोता था और पहली जैसे ही आवाज जाती थी तो कंस आके फौरन से उसको मार डालता था। देवकी के 6-5 पुत्रों को मारा, सातवां गर्भ ना जाने कहाँ चला गया। देवकी को ये भी पता नहीं चला कि रोहिणी मैया के गर्भ में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वो बहुत ज्यादा दुखी होती थी, वो बोलती थी कि ऐसी माता तो शायद कोई संसार में नहीं होगी जो अब तक जी रही है अपने 6-6 पुत्रों की मृत्यु देखकर। मैं जी रही हूँ, ये सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने पुत्रों की रोज रोज मृत्यु देख रही हूँ। और सातवां पुत्र, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान बच गए, मतलब कहने का अर्थ ही है कि भगवान तो जाहिर सी बात है कंस को मारने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी देवकी का दुख तो उस समय भी कम नहीं हुआ। जैसे ही कृष्ण उत्पन्न हुए तो वो अपनी माता से दूर चले गए। एक माता का पुत्र जीवित है, एक तो पहले से इतने सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, और देवकी का एक अंतिम पुत्र जिसके सहारे, जिसके आने की आस में उसने इतने सारे वर्षों तक दुख सहा, वो पुत्र भगवान होते हुए भी उसे छोड़कर चला गया। मतलब वो फिर भी इतने समय तक, अब कृष्ण क्या, जब कृष्ण का जन्म हुआ कृष्ण तो गोकुल में चले गए और वहां पर तो बहुत आनंद किया कृष्ण ने गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, मैया के साथ, यशोदा मैया के साथ बहुत सारी बाल लीलाएं की, लेकिन देवकी को तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। देवकी को तो उतने समय तक कंटिन्यूस कष्ट भोगने पड़े ना, जब कृष्ण, अब कृष्ण थे गोकुल में, अब उसको फिर भी देवकी मैया को मेरे पुत्र की सदैव चिंता रहती थी कि मेरे पुत्र को कहीं कंस कुछ कर ना दे, कुछ हो ना जाए। वहां पर रहकर एक क्षण के लिए भी उसे आनंद नहीं था। जब से उसका विवाह हुआ था देवकी मैया का, जिस दिन से, अभी उसका कोई कुसूर नहीं था। अगर हम देवकी मैया के चरित्र को देखें तो उसने जीवन में कोई अपराध नहीं किया था, अपराध नहीं था, इतना स्नेह था कंस का अपनी बहन के प्रति, इसीलिए तो उसने विवाह के दिन देवकी मैया के रथ को खुद चलाना, सारथी बनना स्वीकार किया, ड्राइवर को हटा दिया, और कंस जैसा राजा भी देवकी को सारथी बनकर लेकर जा रहा था। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई और उसी समय, अभी उनका विवाह हुआ है, भगवान जन्म लेंगे 8वें गर्भ से, और उसी समय उसको कारागार में कंस ने जो रथ की वो डोरी ना जिससे चलाते हैं घोड़ों को, वो छोड़कर फौरन देवकी को चोटी से पकड़ा और उसको कारागृह में डाल दिया। उसी क्षण, अपराध क्या था कि उनके गर्भ से भगवान जन्म लेंगे, और ये अपराध को उन्होंने पूरे जीवन तक भुगता, जब तक वो उनका विवाह हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस वो दुखी रहे। यहाँ पर रुद्धाति चिरम शुचार पिता, यानी कंटिन्यूअस वो शोक में रही। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी अपने विषय में कह रही हैं, विमोचिताहम च सहात्मजा विभो, आपने मेरी रक्षा की च सहात्मजा, सहात्मजा मतलब मेरे बच्चों के साथ, मेरी तो रक्षा की आपने मेरे बच्चों के साथ, आपने देवकी के बच्चों की भी रक्षा नहीं की, उसकी आंखों के सामने उसके सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया, आपने एक बार भी उनको बचाया नहीं, एक भी पुत्र को, सबको उनके सामने मरते हुए देखा, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया, विमोचिता हम च सहात्मजा विभो, मेरे बच्चों की भी आपने रक्षा की। इतना बड़ा युद्ध हुआ, पग पग पर जब कुंती महारानी का विवाह हुआ था, अब कुंती महारानी के कष्टों के विषय में यदि हम सोचें, तो जैसे उनका विवाह हुआ तो फौरन से उनको कष्ट देना शुरू नहीं किया किसी ने, काफी समय तक वो पांडव के साथ राजधानी में रही थी हस्तिनापुर में, बहुत बहुत समय तक उन्होंने राज्य का आनंद लिया था, और काफी समय के बाद जब महाराजा पांडव को श्राप मिला था तब वो जाके वन में रही थी। और अगर देखा जाए तो कुंती महारानी के भी दुखों की कोई सीमा नहीं थी। जब उनका विवाह हुआ, उनके पति को ये श्राप मिल गया कि आप स्त्री संग करने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, यानी साथ में रहते हुए भी वो अपने पति से अलग ही रहती थी, और उसके बाद उनके पति ने उन्हें कहा कि भाई आप अलग अलग देवताओं से पुत्र उत्पन्न करो। उस समय भी उनको ये पता था कि इससे भी मेरी लोक निंदा होगी, लेकिन फिर भी पति आज्ञा से जब उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए और उसके बाद पांडव की मृत्यु हो गई और वो इन समस्त पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर जब आई, तब कोई एक व्यक्ति भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि पांडव की श्राप था कि वो अपनी पत्नी का संग नहीं कर सकता, तो ये सब उस अबला नारी को जिनके पति की मृत्यु हो गई थी, वो सब लोग उनको दोषी ठहरा रहे थे कि अवश्य इसका किसी के साथ अवैध संग होगा जिसके ये सारे पुत्र हैं। ये पांडव के तो पुत्र हो ही नहीं सकते, कोई यकीन भी नहीं कर रहा था कि ये किसी देवता ने इनको दिए। फिर वेद व्यास जी आए और उन्होंने सबको समझाया कि वास्तव में ये देवताओं के पुत्र हैं और पांडव के ही अंश हैं, इनको आपको स्वीकार करना है और ये पांडव पुत्र ही कहलाएंगे संसार में। जब वेद व्यास जी ने उनको बहुत बहुत समझाया तब जाकर उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन ये तो स्वीकार कर लिया कि चलो ये पांडव पुत्र हैं, लेकिन उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये राज्य अधिकारी हैं, राज्य के उत्तराधिकारी उनको कभी भी। और जब से वो आए थे तब से कुंती महारानी और उनके पुत्रों को सदैव कष्ट दिए जाते थे, कोई एक ऐसा समय नहीं था कि इनको कष्ट नहीं दिए जाते हों। और जितने भी हस्तिनापुर के निवासी थे वो सब इनके, एक तो दुर्योधन खल था और दुर्योधन के 100 भाई थे वो सब इनके खिलाफ थे, और फिर उनके सांग जितनी भी उनके मित्र इत्यादि थे वो सब इनके खिलाफ थे। जो इनकी सहाय खिलाफ नहीं थे ना, जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, लेकिन वो भी प्रत्यक्ष उनका साथ नहीं दे सकते थे, सदैव उनको दुर्योधन की योजना में सहायक होना पड़ता था। अब जैसे जब लाक्षाग्रह हुआ तब भी उनका साथ देना पड़ा, और उसके बाद जब द्यूत क्रीड़ा हुई तब भी उन्होंने, भले ही वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन के खिलाफ नहीं जा सक रहे थे, फिर भी वो दुर्योधन, यहाँ तक कि जब 12 साल का वनवास मिलने के बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला, तब ये लिखा है शास्त्र में कि भीष्म और द्रोण भी दुर्योधन की सेना के साथ उनको खोजने के लिए गए थे कि वो मिल जाएं तो उन्हें एक बार फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिले। तो इतना कुंती महारानी बोल रही कि सब मेरे खिलाफ थे, मेरा अगर कोई सहारा था तो केवल आप थे, लेकिन आपने मुझे दुख आपके होने से मुझे कभी दुख का एहसास ही नहीं होने दिया। आपने हर एक पग में मेरी रक्षा की। आगे कहते हैं, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपात् विपत्कणात्। त्वयैव नाथेन, तुम एकमात्र हमारे नाथ थे, और मुहुर्विपत्कणात्। अब देखो इन दोनों चीजों में ऑपोजिट है। जब देवकी के विषय में वो कह रही है तो क्या कह रही है, कंसेन रुद्राति चिरम सुचार्पिता। कंस के ऊपर अति चिरम यानी बहुत बहुत काल तक आपने अत्याचार होने दिया, और वो सदैव शोक में होती थी। लेकिन मेरे बारे में क्या, मुहुर विपत गणान। आपने मुहुर का मतलब होता है कंटिन्यूस, बहुत जल्दी जल्दी आपने विपत गणात, विपत्तियों के बहुत सारे समूह मेरे ऊपर भी आए, लेकिन आपने कभी किसी विपत्ति को अधिक समय तक रहने नहीं दिया। मुहूर्त का मतलब होता है फटाफट, आपने जब भी कोई विपत्ति आती थी तो आप फौरन से अपनी कृपा से उस विपत्ति को दूर कर देते थे। यानी जैसे द्रौपदी का चीरहरण एक बहुत बड़ी विपत्ति थी पांडव समाज के लिए, लेकिन जैसे ही ये क्रिया हो रही थी उसी समय भगवान आए और उनकी रक्षा की। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, उस समय भी बहुत बड़ी विपदा हो सकती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, अभी आगे हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी के पत्तल से एक चावल का दाना खाकर समस्त दुर्वासा ऋषि के साथ समस्त ऋषि समाज को संतुष्ट कर दिया। उसके अतिरिक्त भी लाक्षागृह हो या फिर दूसरा कोई भी, जब भी अभी इतना बड़ा युद्ध हुआ उसमें भगवान ने रक्षा की, और उसके बाद उत्तरा के गर्भ पे जो कि परीक्षित महाराज था उसको भी ब्रह्म अस्त्र से रक्षा की, और इतने सारे पांचों पांडवों को मारने की प्लानिंग्स किए गए, उनसे भी उनकी रक्षा की गई। तो यहाँ पर कुंती महारानी ये दर्शा रही हैं कि आपका मेरे साथ प्रेम अधिक है, आप मुझसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि देवकी मैया के साथ भी आप इतना प्रेम नहीं करते जितना कि आपने मेरे साथ प्रेम किया है, और मेरी तो आपने सदैव सदैव रक्षा की है, और कभी भी अधिक समय तक मुझे शोक में रहने नहीं दिया। यहाँ पर हमें सीखना चाहिए, भक्त को भगवान से कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। भले ही अगर देखा जाए तो कुंती के जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। वो जब से विवाह करके आई थी फिर जंगल में रह रही थी, पुत्रों को भी सदैव मारा जाता था, कभी उनको घर से निकाला, लाक्षागृह के लिए जब भी घर से निकाला गया तो भी वो भटक रही थी इधर उधर। उसके बाद भी खांडोपरस उनको दिया गया, उसमें भी बहुत ज्यादा उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद युद्ध क्रीड़ा हुई, उसकी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उसके बाद इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें इसके सारे खानदान के सारे बच्चे जो थे उनकी हत्या हो गई। इतना ज्यादा कष्ट, अगर कष्टों की ओर देखा जाए तो कम कष्ट नहीं मिले थे उन्हें, लेकिन स्वभाव होता है भक्त का वो सदैव भगवान की कृपा की ओर दिखता है। लेकिन आज हमारा समाज क्या है, भले ही भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार किए, अब देखा जाए तो कुंती महारानी के दुख के समान एक रत्ती बराबर भी हमारा दुख नहीं है, है ना। हम सब जो भी हैं, इतना दुख किसी को मिलता ही नहीं है आजकल। वो तो द्वापर युग था, सच्चे भक्त थे वो बर्दाश्त करते थे। आज भगवान को भी पता है कि अगर इस तरह का कोई दुख किसी को दिया जाएगा ना, फौरन से भगवान के सामने आकर कहेगा, बना के क्यों बिगाड़ा है। वो भगवान को दोष देना आता है खाली। आज की भक्ति भक्त जो है ना, जो कहलाते हैं, वो सदैव भगवान के सामने आकर कंप्लेन करते हैं। भले भक्त बाहर से होते हैं लेकिन हमेशा उन चीजों को देखते हैं जहां पर भगवान ने, उनको ऐसा लगता है यहाँ पर भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मेरे ऊपर ये कष्ट आया, मेरे ऊपर ये कष्ट आया, मेरे ऊपर ये कष्ट आया, मेरे ऊपर ये कष्ट आया। कष्टों को तो बहुत ही गौर से देखते हैं, लेकिन जो भगवान की कृपा है जो उन कष्टों के अंदर भी आपकी सुरक्षा कर रही थी उसको नहीं देखते। लेकिन कुंती महारानी हमें दिखा रही है कि एक भक्त की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। भले ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें बहुत बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन हमें सदैव भगवान से ये कहना चाहिए कि कष्ट तो ये बहुत कम है, लेकिन आपकी कृपा अधिक है। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, उस कृपा के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। और दूसरा ये, अभी एक और शिक्षा श्लोक में कुंती महारानी दे रही हैं, त्वयैव नाथेन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये शब्द बताया है। कुंती महारानी कहती हैं, आपने मेरी रक्षा क्यों की? क्या मेरे अंदर इतनी योग्यता थी जितनी देवकी मैया के अंदर थी, या देवकी मैया के बराबर मैं आपसे प्रेम करती थी, या उनसे ज्यादा मैं आपसे स्नेह करती थी? मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी थी कि आपने मेरी हर समय बहुत जल्दी जल्दी रक्षा की, कभी भी मुझे कष्ट में देखा नहीं, कभी भी मुझे कष्ट में अधिक देर तक रखने नहीं दिया? तो मेरे अंदर योग्यता क्या थी? इसका उत्तर देते हुए कुंती महारानी कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि देवकी के समान या उनसे ज्यादा मेरा आप में प्रेम है, बल्कि देवकी के प्रेम के करोड़वें अंश के बराबर भी मेरा प्रेम नहीं है। पर आपने सदैव मेरा साथ दिया, इसलिए क्योंकि मैं अनाथनी थी, मेरा आपके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं था। त्वयैव नाथेन, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं, कोई नाथ नहीं था। साधारणतया पति ही पत्नी का नाथ कहलाता है, कि उसकी सहायता का भार क्योंकि पति के ऊपर होता है। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर कह रही कि देवकी के ऊपर भले ही कष्ट आए थे, लेकिन उसके साथ उसका पति तो था। यादव कुल के अन्य जितने भी अच्छे लोग थे वो उनके साथ थे, भले ही वो कारागृह में थे, लेकिन वसुदेव से सब प्रेम स्नेह करते थे, और कंस के अतिरिक्त कोई भी देवकी और वसुदेव के खिलाफ नहीं था। यहाँ पर अभी हमने देखा कि कुंती महारानी और उनके पांडव पुत्रों के साथ कोई भी नहीं था, कोई भी हस्तिनापुर का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो उनकी सहायता करने के लिए आ गया है, कोई भी नहीं था। जो चाहते थे वो भी नहीं कर पाते थे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था। सब लोग दुर्योधन, और जब युद्ध भी हम देखते हैं, युद्ध में भी सारे के सारे लोग उनके साथ थे। अगर देखा जाए सही मायनों में तो पांडवों के साथ कौन था? पांच पांडव थे, कृष्ण था और द्रौपदी की सेना, जो द्रौपदी के पिताजी हैं उनकी सेना थी। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही कि आपका स्नेह मेरे साथ इसलिए अधिक था क्योंकि मैं अनाथनी थी। अपनी दीनता का दर्शन कराते हुए कह रही हैं कि देवकी के पति जीवित थे, परंतु मेरा तो आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। यहाँ पर कुंती महारानी बता रही हैं कि मैं देवकी के समान सौभाग्यशालिनी नहीं थी, पर वो आपकी माता थी, पर फिर भी मैं अनाथनी थी। आपके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कुंती और उसके परिवार का कोई और रक्षक था ही नहीं, और वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुंती महारानी का अपना परिवार, अपने जेठ थे धृतराष्ट्र, और अपना ही परिवार जो था उनके खिलाफ हो गया था। और अगर देवकी का भी देखा जाए तो उनका अपना भाई उनके खिलाफ हो गया था। तो यहाँ से ये शिक्षा भी मिलती है, कुंती महारानी हमें दे रही है कि भले ही हमारे साथ कितना ही अपनापन दिखा रहे हो, भले वो भी दिखा रहे थे, दुर्योधन इत्यादि भी अपनापन दिखा रहे थे, लेकिन सदैव अंदर कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा होता था। तो कुंती महारानी बता रही है, इस संसार में यदि वास्तव में आपका कोई हितकर है, यदि आपका वास्तव में हित चाहने वाला कोई है, तो वो केवल और केवल भगवान ही है। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि संसार में जिसको भी अधिक दुख मिलते हैं अपने बंधु बांधवों के द्वारा ही मिलते हैं। जो पराए लोग हैं, जो आपको पहचानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो आपको दुख के कारण, आपके दुख का कारण नहीं बनते, अपने ही सदैव दुख का कारण बनते हैं। इसी जीव को सदैव एकमात्र कृष्ण को ही अपना नाथ मानना चाहिए कि वही मेरी रक्षा करेंगे। और यदि इस तरह से समस्त सहारों को छोड़कर कोई भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो भगवान अवश्य हर हाल में उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी दिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्तों का संबंध कैसा होता है। प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्म जगत में यही सोचता है कि मैं निम्न कोटि का प्रेमी हूँ, मैं अच्छी तरह से भगवान की सेवा नहीं कर पाता, मैं अच्छी तरह से भगवान से प्रेम नहीं कर पाता, मेरे अंदर शुद्धता नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। लेकिन साथ में ये सोचता है कि भले ही मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा कृष्ण मुझसे स्नेह करते हैं। मेरे अंदर अगर दीनता होगी ना, किसी के अंदर विनम्रता होगी ना, तभी वो सोचेगा, भले ही थोड़ा सा भी स्नेह हो तो भी वो उसको बहुत ज्यादा लगेगा। उसको क्या लगेगा कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन भगवान मुझसे कितना ज्यादा स्नेह करते हैं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है, भगवान ने इतनी सारी कृपा किया हमें, हमारे ऊपर हर एक वस्तु प्रदान की, लेकिन फिर भी हमेशा ये लगता है कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी हमें दिखा रही है कि वास्तविक भक्त सदैव क्या सोचता है कि कृष्ण सबसे ज्यादा मुझ पर स्नेह कर रहे हैं, और वास्तव में कर रहे हैं। अगर हम लीला को देखेंगे तो कुंती महारानी से भगवान ने बहुत बहुत स्नेह, वो सदैव भगवान कुंती महारानी के साथ रहते थे, अपनी माताओं के साथ इतना ज्यादा नहीं रहे। यशोदा मैया के साथ बाल लीला खेल के चले आए, उसके बाद यशोदा मैया कंटिन्यू, भले ही कृष्ण एक क्षण के लिए भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, लेकिन यशोदा मैया को तो सदैव आस रहती थी कि कब मेरा कृष्ण आएगा, कब। मैं रोजाना माखन बना के रखती थी, रोजाना उस रास्ते से नेत्र नहीं हटाती थी जिस रास्ते से के जो मथुरा से आने वाला जो पंथ होता था वहीं पर आंखें टिकाए बैठी होती थी और हटाती नहीं थी नजरें। लेकिन और देवकी मैया वो भी सदैव, जब कंस के कारागृह से निकल भी गए थे तो भी द्वारिका में भगवान उनके साथ बहुत कम रहते थे, लेकिन कुंती महारानी और उनके बच्चों के साथ भगवान सदैव रहते थे। तो कुंती महारानी बता रही हैं कि आप सदैव से हमारे संकट हारी हैं, क्योंकि हमने आपके अतिरिक्त कभी और किसी का आश्रय लिया ही नहीं। त्वयाय वनाथ है ना, केवल एकमात्र आप ही हमारे नाथ। शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि निष्कर्ष यह निकलता है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट में रहता है। कभी कभी वे जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असमय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त हो जाता है। कि भगवान कभी कभी ऐसा करके दिखाते हैं कि सारे लोग को आपके खिलाफ खिलाफ कर देते हैं, ताकि भक्त जो है उसको ये रियलाइज हो कि मेरे अतिरिक्त आपका और कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, और कोई भी आपको मेरे अतिरिक्त इस संसार में संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। और जब भगवान के प्रति भक्त का इतना स्नेह, इतनी अनुरक्ति हो जाती है और उसको ये लगने लगता है कि मेरा कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जब जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त को उतना ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। सफलता क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और यदि दूसरों के ऊपर हमें भरोसा होगा, दूसरों के ऊपर विश्वास होगा, दूसरों के सहायता का की आस होगी, तो फिर भगवान के प्रति प्रेम उतना कम होगा। और जब कभी कभी ऐसा होता है, भगवान स्वयं कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम श्रेय, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। जिस पे ज्यादा अनुग्रह करता हूँ उसका धन, उसका श्रेय, उसका उसके सगे संबंधी सब उसे छीन लेता हूँ, ताकि उसे ये रियलाइज हो कि मेरे अतिरिक्त और कोई प्रेम करने योग्य नहीं है। फिर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रेम मुझे समर्पित करेगा। और ये है सफलता, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जब हम कृष्ण को अपना संपूर्ण प्रेम समर्पित करेंगे, तभी ही कृष्ण भी अपना संपूर्ण आश्रय, संपूर्ण संरक्षण और संपूर्ण प्रेम हमें समर्पित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरि बोल।